İran Radio Podcast.
दोस्तों जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अब्बास हूँ। इसराइल का मेटास्टेसिस पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है। इसमें हम इसराइल की नाजायज स्थापना के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। इसराइल आज पूरी दुनिया में सरकारी आतंकवाद का एक प्रतीक बन चुका है और वो कई दशकों से फिलिस्तीनियों की सरजमीन को छीन रहा है और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी तक हो रही है। फिलिस्तीन में ज़ायनियों की जड़ों का पता लगाने के लिए हमें करीब दो सदी पीछे पलटकर जाना होगा और यहूदियों के पहले पलायन की हमें बात करनी होगी। पहला पलायन कब हुआ और इसकी क्या कहानी है? 15 मई 1882 को रूसी समाज के विभिन्न हिस्सों में यहूदियों के बढ़ते असर और रसूख पर काबू पाने के लिए ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 3 कानून पारित किए जिससे रूस में यहूदियों के असर को कम किया जा सके। ये कानून कुछ इस तरह के थे। यहूदियों को शहरों से बाहर बसने का अधिकार नहीं होगा। शहरों और कस्बों से बाहर कोई भी यहूदियों को ज़मीन या घर नहीं बेचेगा या उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। रविवार और ईसाइयों की औपचारिक छुट्टियों में यहूदियों को कारोबार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इन पाबंदियों की वजह से यहूदियों के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम दूसरों की तरह रूसी नागरिक नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? जवाब साफ था कि यहूदी। ओडेसा के रहने वाले एक यहूदी लियोन पिंस्कर ने उस जमाने में जर्मनी में एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑटो इम्पेसिपेशन या स्वमुक्ति। इस किताब में पिंस्कर ने लिखा था, यहूदियों से नफरत या यहूदी फोबिया एक लाइलाज बीमारी है और जब तक यहूदियों का कोई अपना वतन नहीं होगा तो वो जिंदा लोगों की नज़र में मुर्दा, स्थानीय लोगों की नज़र में बाहरी और एक साथ बसने वालों की नज़र में आवारा वतन, अमीरों की नज़र में भिखारी और सभी प्रतिस्पर्धा करने वालों की नज़र में मनहूस और अशुभ ही रहेंगे। पिंस्कर ने ऑटो इम्पेसिपेशन में लिखा कि यहूदियों को एक कौम की तरह रहना होगा और उन्हें अपने लिए एक मुल्क बनाना होगा। यही पहली चिंगारी थी। पिंस्कर न तो दुनिया का पहला ज़ायोनी था और न ही आखिरी, लेकिन यूरोप और रूसी यहूदियों पर जो दबाव था उसके कारण उसने अपनी इस किताब से यहूदियों के बीच ज़ायोनीवाद की एक नई रूह फूंक दी। इसके बाद सबसे पहले यमनी यहूदियों ने फिलिस्तीन की ओर पलायन पर विचार करना शुरू कर दिया। 23 जुलाई 1881 को सना में यहूदियों ने एक बड़ी शोक सभा का आयोजन किया जिसके बाद उनका एक ग्रुप रेड सी को पार करके और मिस्र से गुजरता हुआ याफा और फिर अंत में बैतुल मुकद्दस या यरूशलम पहुंचा। कहा जाता है कि रूस और पूर्वी यूरोप से कुछ यहूदी यमनी यहूदियों के 7 महीने बाद फिलिस्तीन की सरजमीन पर जा पहुंचे। उस वक्त फिलिस्तीन उस्मानी खिलाफत के तहत था और वहाँ की अक्सर आबादी मुसलमान अरबों की थी, इसलिए कल्चर और ज़बान के लिहाज से वो यूरोपीय यहूदियों से अलग थे। ठंडे इलाकों में रहने वाले रूसी और यूरोपीय यहूदियों को जब फिलिस्तीन में कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ा तो वो अपने फैसले पर शर्मिंदा होने लगे और उन्होंने उन्हीं इलाकों की ओर पलटने का फैसला किया जहां उन्हें समस्याओं का सामना था। प्रवासी यहूदी फिलिस्तीन में पानी की कमी और शदीद गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। कुछ समय बाद जब यूरोपीय प्रवासी यहूदी मौसम की मार की वजह से वापस अपने देश की ओर पलटने लगे तो उन्हें फिलिस्तीन में रोकने और दूसरे देशों से फिलिस्तीन की ओर अधिक यहूदियों के पलायन के लिए ज़ायोनी संगठनों का गठन शुरू हो गया। ज़ायोनी संगठनों ने फिलिस्तीन की ओर पलायन के लिए यहूदियों को प्रोत्साहित किया और इसके लिए काफ़ी बड़ा बजट अलॉट किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रोथ्सचाइल्ड फैमिली का था। रोथ्सचाइल्ड फैमिली ने यहूदियों को बसाने के लिए बंजर जमीनें भी खरीदी। मकबूजा फिलिस्तीन में स्थित पताह तिकवा और रिशोन लेट्सियोन दो ऐसे शहर हैं जो जमाने में बहुत छोटे गांव थे और जहां सबसे पहले पलायन करने वाले यहूदी आकर बसे थे। ऐसा अंदाजा है कि उस्मानी शासन के वक्त करीब 6,000 यहूदी फिलिस्तीन में रह रहे थे। बिन बुलाए मेहमानों की फिलिस्तीनी सरजमीन पर संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उनका वहां के स्थानीय लोगों से टकराव भी बढ़ने लगा। ज़ायोनी इतिहासकार बेनी मोरिस ने अपनी किताब राइट्स विक्टिम्स में उस जमाने में फिलिस्तीनियों और प्रवासियों के बीच पैदा हुए मतभेदों के बारे में इस तरह लिखा है। अरब अपनी इस्लामी और अरबी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते थे और ख़ुद को वहाँ के कानूनी बाशिंदों के रूप में मजबूत करना चाहते थे, हालांकि ज़ायोनी वहाँ की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से बदलना चाहते थे और जितना मुमकिन था वो ज़मीन खरीद रहे थे और बस्तियाँ बसा रहे थे ताकि फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों से छीन कर वहाँ यहूदी देश की स्थापना कर दें। कई दशकों तक ज़ायोनियों ने अरबों के डर से अपने इरादों को जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन उनके इरादे पक्के थे और वो ये भी जानते थे कि उन्हें अपने मकसद को हासिल करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल करना है। उस दौरान ज़ायोनी लीडरों के बीच होने वाले पत्राचार से ये साफ जाहिर हो जाता है कि क्या हालात थे। बेनी मोरिस ने ऐसे ही एक खत को नमूने के तौर पर अपनी किताब में पेश किया है जो एक ज़ायोनी ने अपने भाई को लिखा था। इस तरह था खत, असली मकसद फिलिस्तीनी सरजमीन पर कब्जा करना और यहूदियों को राजनीतिक आज़ादी दिलाना है, ऐसी आज़ादी के जिसे 2000 साल पहले छीन लिया गया था। यहूदी अब उठेंगे, हथियार उठाएंगे और डंके की चोट पर कहेंगे कि ये हमारे पुरखों की सरजमीन है। फिलिस्तीन की ओर पलायन की दास्तान यहीं रुक सकती थी, लेकिन एक ऑस्ट्रियाई ज़ायोनी पत्रकार थियोडोर हेर्ज़ल ने, के जिसका नाम आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, इसे आगे बढ़ाया। हेर्ज़ल के जीवन पर दो बड़ी मशहूर हस्तियों का बड़ा गहरा असर था। उसने एक ऐसे शख्स से भी सबक लिया जो एक यहूदी के रूप में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म की बलि चढ़ गया। उसने ज़ायोनीवाद को गंभीरता से लिया और एक दूसरे शख्स से दूसरों की जमीन को छीनने का हुनर सीखा। पहला शख्स अल्फर्ड ड्रीफस था और दूसरा सेसिल रोड्स। हेर्ज़ल ने कई जगहों पर रोड्स की बड़ी तारीफ की है और अपनी डायरी में 18 बार उसका नाम लिखा है, जिससे पता चलता है कि उसने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटेन के एक सफल लेकिन बर्बर और जल्लाद उपनिवेशवादी के रूप में उसके जीवन का गहरा अध्ययन किया है। हालांकि रोड्स ने ब्रिटिश उपनिवेश दक्षिण अफ्रीका में एक इलाके को खरीदने की हेर्ज़ल की पेशकश पर उससे कहा था कि अपने पैसों को अपनी पॉकेट में ही रखे रहो, लेकिन हेर्ज़ल ने लिखा है कि मैं इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं हुआ क्योंकि उनकी शख्सियत का ये वही पहलू था जिसकी मुझे पहले से आशा थी। हेर्ज़ल ने एक दूसरी जगह पर हैरतअंगेज आत्मविश्वास के बारे में इस तरह लिखा है, मेरे शतरंज की बिसात पर जो मुहरे होंगे उनका नाम है सेसिल रोड्स, ब्रिटिश किंग रोजवेस्ट और जर्म किंग। मैं इन लोगों में से हर एक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करूंगा। हर्जल के आग्रह के 6 महीने बाद मीडिएटर्स 19 जनवरी 1902 को मुलाकात के लिए रोड्स की सहमति लेने में कामयाब हो गए। इसके बावजूद हर्जल की नजर में अभी हालात मुनासिब नहीं थे। वो अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि उसने रोड्स को मुलाकात के लिए राजी कर लिया है। इसलिए उसने एक खत लिखा जिसमें गम और खुशी और चिंता और संतोष जाहिर करने वाली बातों का जिक्र था। उसने अपने इस खत में साफ साफ फिलिस्तीन पर कब्जा करने, अमरीकी नेताओं में विचारों के अभाव, रोड्स के स्पष्ट और व्यवहारिक विचारों और इसके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होने के बारे में लिखा। जैसा कि हर्जल की डायरी में लिखा है, उसके करीब 70 दिन बाद रोड्स का निधन हो गया, जिसके बाद हर्जल को बड़ा दुख और सदमा हुआ कि वो उससे मुलाकात क्यों नहीं कर सका। ये समझने के लिए कि हर्जल के लिए रोड्स की इतनी अहमियत क्यों थी, उसके अतीत पर एक सरसरी सी नजर डालना होगी। रोड्स डायमंड निकालने और उसका व्यापार करने वाली डी बियर्स कंपनी का संस्थापक और मालिक था। ये वही कंपनी है जिसने 2014 से 2018 तक दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड बेचने का तमगा अपने नाम किया है। रोड्स जब केप टाउन का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसने एक योजना पेश की। इस योजना के मुताबिक हर किसान को 3 हेक्टेयर खेती की जमीन दी जाए, लेकिन ये जमीन बेची नहीं जा सकेगी और न ही इसकी मालिकियत का हक किसी दूसरे को सौंपा जा सकेगा। किसान की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा उसका वारिस होगा। किसान के दूसरे बच्चों को आजीविका हासिल करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी तरह से भारी टैक्सों के नीचे दबकर अफ्रीकी लोगों के लिए गुलामों की तरह काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस योजना में इस तरह का भी प्रावधान था कि लोगों को किसी दूसरे इलाके में जमीन अलॉट की जाती थी ताकि उनके कबीले के लोग उनकी मदद ना कर सकें और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ वे बगावत या प्रतिरोध ना कर पाएं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मजबूत बनाने में रोड्स की गैर इंसानी योजनाएं बड़ी प्रभावी रहीं। रोड्स ने एक कानून भी पास करवाया जिसमें इलेक्शन में शिरकत करने वालों के लिए जमींदार होने की शर्त लगा दी गई थी, जिससे अफ्रीकी लोग इलेक्शन में शिरकत नहीं कर सकें। ये सेसिल रोड्स की नीतियों के कुछ नमूने थे जिसकी वजह से वो हर्जल की नज़र में एक महान आदर्श बन गया था जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती हो। हर्जल के लिए एक दूसरा आदर्श अल्फर्ड ड्रीफस था, लेकिन वो उसके लिए गरीबी, भुखमरी और परेशान हाली का प्रतीक था। हर्जल के लिए इस शख्स की अहमियत सिर्फ उससे सबक हासिल करने की हद तक थी, ताकि वो उसे यहूदियों के सामने पेश करके इस अंजाम को पहुंचने के बारे में उन्हें डरा सके। उसने यहूदियों के सामने उसे पेश करके बताया कि इस अंजाम से निजात का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ज़ायोनी आंदोलन से जुड़ना और फिलिस्तीन की ओर पलायन करना और उस पर कब्जा जमा लेना। यहाँ आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ड्रीफस के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसका ये अंजाम हुआ और यहूदियों के लिए वो एक पाठ बन गया। दरअसल ड्रीफस एक यहूदी था जिस पर फ्रांस ने जर्मनी की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। मुल्क से गद्दारी के आरोप की वजह से फ्रांस के लोग यहूदियों से नाराज थे और वो यहूदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ड्रीफस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगने की दास्तान की शुरुआत उन सबूतों के आधार पर हुई थी जो फ्रांस की खुफिया एजेंसी के हाथ लगे थे। कुछ सबूत इस बात का पता दे रहे थे कि पेरिस में जर्मन एम्बेसी में कोई फ्रांसीसी शख्स है जो जर्मनी को फ्रांस के हथियारों के बारे में खुफिया जानकारियाँ दे रहा है। इस खबर ने इतना तूल पकड़ा कि फ्रांसीसी अधिकारियों पर उस जासूस को पकड़ने का दबाव काफी बढ़ गया। एविडेंस इस बात की गवाही दे रहे थे कि जासूस कोई सैन्य अधिकारी है और वो अपने देश के साथ बड़ी गद्दारी कर रहा है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार ड्रीफस पकड़ में आ गया। उसे अदालत में पेश किया गया। हालांकि उसे मुलजिम ठहराने के लिए सबूत काफी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत के आदेश के मुताबिक उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं और शैतान आइलैंड में काले पानी की सजा सुना दी गई। इस वाकये के बाद फ्रांस में दक्षिण पंथियों ने यहूदियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हर्जल ने फ्रांस और जर्मनी के बीच झगड़े का पूरा फायदा उठाया और इसे फिलिस्तीन की ओर यूरोपीय यहूदियों के पलायन की योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हर्जल ने इस बारे में लिखा है, जब मैं जर्मन किंग के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने ड्रीफस की कहानी कुछ इस तरह से बयान की जैसे कि उसका जासूसी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जर्मन किंग ने कहा कि यह मामला फ्रांसीसी सेना में करप्शन का था। कुछ अफसर घोटाला करना चाहते थे और उन्होंने ड्रीफस को इस बारे में अपनी जबान बंद रखने के लिए 10,000 फ्रांक की रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन ड्रीफस ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे जासूसी के इल्जाम में फंसा दिया। ड्रीफस और रोड्स की इस दास्तान को पढ़कर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों हर्जल की जिंदगी में क्यों इतने अहम थे। ड्रीफस एक ऐसी सच्चाई थी जिसका इस्तेमाल करके हर्जल यहूदियों को फिलिस्तीन की ओर पलायन के लिए उकसाना चाहता था, क्योंकि उसे इस स्टोरी में फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए काफी दम दिखाई दे रहा था। उसके बाद 1896 में हर्जल ने जर्मनी में एक ब्रोशर लिखा जिसका नाम था यहूदिस्तान। इसमें इस समस्या के समाधान के लिए एक बुनियादी हल पेश किया गया था। उसने इस ब्रोशर में लिखा, यहूदियों को अगर दुर्दशा से निकलना है तो उन्हें फिलिस्तीन या अर्जेंटीना की ओर कूच करना होगा। वे वहां जमीनें खरीदें और अपना देश आबाद करें। उनका कहना था कि जब तक कि मालिकाना हक हासिल न हो, माइग्रेशन का कोई फायदा नहीं है। हर्जल को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जिन दोनों इलाकों का नाम वो ले रहा है वहां आबादी है और वहां मूल निवासी रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने यहूदियों को माइग्रेशन के लिए उकसाया और मालिकाना हक लेने पर बल दिया। उसका ये मानना था कि अगर उनके पास मालिकाना हक नहीं होगा तो जब भी उनका स्थानीय लोगों से मतभेद होगा, वहां की हुकूमत उन्हें वहां से निकाल बाहर करेगी। इस हकीकत के बावजूद ज़ायोनियों ने 1901 से ये प्रचार शुरू कर दिया कि फिलिस्तीन का इलाका उजड़ा हुआ है और वहां कोई नहीं रहता। इसराइल ज़ंगविल वो पहला शख्स था जिसने फिलिस्तीन के लिए कहा था, बिना लोगों का मुल्क, बिना मुल्क वाले लोगों के लिए। उसके 16 साल बाद उसने लिखा कि ये जुमला गलत था, क्योंकि इस देश में 6,00,000 अरब उस वक्त भी आबाद थे। हर्जल के ब्रोशर में लिखा है, यहूदियों की ये समस्या हमेशा बाकी रहेगी। जहां भी हम जाएंगे वहां यातनाओं और तानों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक ही समाधान है और वो सियासी समाधान है। हर्जल के यहूदिस्तान की बुनियाद उपनिवेशवाद और गैर कानूनी कब्जे पर रखी गई है, लेकिन उसे अपनी पूरी उम्र में फिलिस्तीनी सरजमीन पर कदम रखने का मौका नहीं मिला। 3 जुलाई 1904 को 44 साल की उम्र में हार्ट अटैक से वियना के निकट उसकी मौत हो गई।